Hello everyone, welcome to another episode of the Mrithu Sachan Show. Today we have a doctor who is on food and travel adventure, food blogger Harshita Gautam. Welcome ma'am.
Hello.
So ma'am, सबसे पहले मैं आपकी food blogging journey के बारे में जानना चाहूँगा. आप कैसे food blogging industry में आई? आपका first blog का experience कैसा था?
मैं फूड ब्लॉगिंग जर्नी में कैसे आई, ये तो इट्स जस्ट लाइक जब मैं नीट की कोचिंग कर रही थी कोटा से, तब इंस्टाग्राम तब ट्रेंड में आना स्टार्ट हुआ था
जी.
एंड आई यूज्ड टू फॉलो बिंगी जेस्ट ब्लॉग, तो मैं मुझे काफी अट्रैक्टिव थी, लेकिन क्योंकि मेरी पढ़ाई थी तो मैं कर नहीं पाती थी. और जब मुझे कॉलेज मिल गया फर्स्ट ईयर में, तो कॉलेज में हर कोई ऐसी चीजें ढूंढता है, मतलब आपके पास काफी टाइम होता है मजे करने के लिए. यूजुअली कॉलेज लाइफ में आप खाते पीते और घूमते हो
जी.
तो बस वही मेरा था कि मैं खाती पीती थी और मैं उसे रिकॉर्ड कर लेती थी, और लेकिन मैं यूजुअली उन्हें रिकॉर्ड करके रख लेती थी, मैं उन्हें कहीं पोस्ट नहीं करती थी. फिर वही काफी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि जब तू इतना अच्छा कॉन्टेंट शूट करती है, तुझे काफी क्रेज भी है, तो इसे पोस्ट करना स्टार्ट कर दे. तो वही मिड फर्स्ट ईयर से, मतलब 4 to 5 years back मैंने ये स्टार्ट किया. फर्स्ट फूड ब्लॉग जो मैंने सीरियसली जाके शूट किया था, वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि जब मैं शूट करने गई तो एक अन्ना करके एक डोसे वाले अंकल थे, जब मैं उनका वीडियो बना रही थी तो उनको उन्होंने मुझसे पूछा आप ये वीडियो क्यों बना रहे, मतलब इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था ना ये चीज कोटा जयपुर में, तो वो थोड़ा डर गए कहीं मैं न्यूज व्यूज से तो नहीं हूँ, और यू नो वो अनहाइजेनिक फूड वाला जो चीज होती है मेरे साथ वो ही. फिर मैंने उन्हें बहुत विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, आप कहीं ऐसा कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं जाएगा. तो फिर उन्होंने मुझे वीडियो बनाने दिया. हाँ
ओके मैम, ऑलराइट. तो मैम, एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है और हमारी ऑडियंस में से मोस्टली सबके लोगों सबके माइंड में आता है, तो क्या जैसे कई लोग कहते हैं कि फूड ब्लॉगर्स को फ्री में खाना मिल जाता है, तो क्या सच में ऐसा होता है?
हाँ यार, जहाँ शूट करने जाते हैं वहाँ तो फ्री में ही खाना होता है. बाकी ऐसा नहीं है कि हम पैसे देके कभी खाना नहीं खाते, हम जहाँ खुद से जाते हैं वहाँ तो हम पे ही करते हैं, बट जहाँ कंटेंट शूट करने जाते हैं वहाँ तो फ्री नहीं होता, इवन हम उनसे चार्ज करते हैं कंटेंट शूट करने का.
ओके, तो मैम एज अ फूड ब्लॉगर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं?
यार मेन जो चैलेंजेस होते हैं वो तो अगर आप स्ट्रीट फूड कंटेंट शूट करते हो उसी में होते हैं. कई बार लोगों को नॉलेज नहीं होती, और बेसिकली उनकी गलती भी नहीं है कुछ. जैसे बहुत आप देखोगे, आप बहुत पुरानी दुकान पे आप जाओगे तो उतने पुराने लोग आपको मिलेंगे, और उन पुराने लोगों को आज के बारे में नहीं पता. तो ऐसा होता है कि आप वो कंटेंट शूट करना चाहते हो अपने पेज के लिए कि यार ये चीज काफी पुरानी है, और पुरानी चीजें देखने में लोगों को मजा भी आता है कि लाइक ये कचौरी की दुकान सबसे पुरानी थी, या फिर ये पाव भाजी वाले जैसे कि जयपुर में पंडित पाव भाजी काफी फेमस है, लेकिन वो लोग जानते नहीं है. तो डेली लाइफ कभी वो डर जाते हैं, कभी आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो तो ऐसे वीडियोज भी काफी वायरल हो रहे हैं, तो कभी आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो तो उनका ऐसा होता है क्यों क्यों पूछ रहे हो आप ये क्वेश्चन, ऐसे वाला होता है. हाँ, तो मेनली ये चैलेंजेस होते हैं. और बाकी आप अगर इसके इनकम सोर्सेज पे आप जाओगे तो स्टार्टिंग में काफी स्ट्रगल होता है लोगों के लिए. मेरा तो ये पार्ट टाइम मतलब है जो ब्लॉगिंग है, लेकिन स्टार्टिंग में लोग आपको सिर्फ खाना देते हैं, सिर्फ खाना ऑफर करते हैं कि आप आओ खाओ कंटेंट बनाओ. लेकिन जिन लोगों ने इसे काफी मतलब फुल टाइम परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि वो सिर्फ खाना खा के पेट भर के आएंगे और फिर उन्हें कंटेंट शूट करके देना पड़ता है स्टार्टिंग के, मतलब 4 to 5 months में. तो जब तक वो अच्छी रीच या अच्छे फॉलोअर्स गेन नहीं कर लेते तब तक.
ओके मैम, तो मैम आप अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे कंसिस्टेंट कैसे रहती हैं? आप रील्स और वीडियोस पोस्ट करने में कंसिस्टेंट कैसे हैं? आगे के कुछ दिनों का कंटेंट आप पहले से शूट करके रखती हैं, फिर कैसे क्या मैनेज करती हैं?
यार मैं एक कंटेंट शूट ही करके रखती हूँ, और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मतलब मैं अभी तो मैं इंटर्नशिप में हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. मैं यूजुअली संडेज को निकलती हूँ, पूरा दिन एक्सप्लोर करती हूँ, और कई बार तो मैं 8 to 10 चीजें भी कवर करती हूँ, और वो मैं कवर करके रख लेती हूँ, और एक दो वीक का कंटेंट फिर मैं उसे धीरे धीरे पोस्ट करती रहती हूँ। कई बार शेड्यूल इतना बिजी होता है कि आप पोस्ट नहीं कर पाते, आपको वो भी टाइम नहीं मिल पाता। तो
जी
इट्स लाइक इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा फीचर है कि आप रील अपनी शेड्यूल कर दो,
जी
आप अगले 7 दिन के रील्स भी शेड्यूल करके रख सकते हो। तो दिस इज द ओनली सोर्स कि आप अच्छे से मतलब मैनेज कर सकते हो। और मेरे लिए तो ऐसा होता है कि जैसे कि मैं जब हम आते जाते हैं, लाइक मैं जैसे क्लिनिक जा रही हूँ, क्लिनिक से आ रही हूँ, तो रास्ते में जो मेरा टाइम होता है आधा घंटे का, उस टाइम पे भी मैं कई बार बैठ के एडिटिंग कर रही होती हूँ कि यार आज तो रील पोस्ट करनी है, ऐसे वाला।
जी मैम। तो मैम लाइक आप एज इंटर्नशिप में भी वर्क कर रही हैं, आपको क्लिनिक जाना होता है, साथ में आप फूड ब्लॉगिंग में कंसिस्टेंट भी हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स दे दीजिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि वो किस तरह से अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स के साथ साथ अपने पैशन को परस्यू कर सकें।
बेसिकली मैं तो यही बोलूंगी, जैसे जो मैं फॉलो करती हूँ वो यही होता है कि आप ऑलरेडी सोच के रखो। मैं जब रात में सोने जाती हूँ, उस टाइम पे मेरी सेकंड देखिए टू डू लिस्ट एकदम रेडी होती है कि कल मुझे क्या क्या मतलब टास्क करने हैं। वो आपने सुना होगा ना, सारे में भाई वाला जो था, उसके
जी
टास्क कंप्लीट होते हैं। तो लाइक आपके सारे टास्क तो कंप्लीट नहीं होते, लेकिन हाँ आपको अपने माइंड मेकअप रखना होता है ऑलरेडी कि
जी
आपको सुबह उठना है, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद में जो मतलब बेसिकली जो आप अगर आप अपना पैशन भी फॉलो करना चाहते हो ना प्रोफेशन के साथ, तो आपको कुछ अपने शौक भी कम करने पड़ते हैं। लाइक जैसे कि आप कॉलेज लाइफ में मूवी देखने जाते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम में रील स्क्रॉल करते हो, फोन चलाते हो, तो वो सब चीजें आपको हटा के, आपको एक्स्ट्रा सोना जो होता है वो हटा के आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ता है। जस्ट लाइक जब मेरे फ्रेंड्स मूवी देख रहे होते हैं तो मैं रील एडिट कर रही होती हूँ,
जी
जब वो घूमने जाते हैं तब मैं सोती हूँ, जब वो सोए हुए होते हैं तो मैं उठ के क्लिनिक जाती हूँ। तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी खुद देखनी पड़ती है। और मैनेजमेंट का तो यही है कि आप पहले से ही सोच के रखो, एक दिन पहले से, कि आपको कल क्या क्या काम करना है, बस।
ओके मैम, लाइक यू टोल्ड कि आपको काफी सारी चीजें मिस करनी पड़ती हैं आप कुछ डिफरेंट अगर कर रहे हैं तो जब आप लाइक आपके जब बाकी दोस्त मूवी देख रहे होते हैं, आप अपना रील्स वगैरह को एडिट कर रहे होते हैं, तो जब वो रील पोस्ट होती है उस पर रिस्पॉन्स आता है लोगों का, लोगों को कमेंट्स आता है, तो आपको कैसा फील होता है, कितना वर्थ इट लगता है वो चीज़ आपको?
यार वही तो है कि वो ही सबसे ज्यादा मजेदार चीज है कि जब वो मूवी भी देखते होते हैं ना, तो मुझे वैसे बेसिकली रील एडिट करने में ही मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए कि मैं मूवी नहीं देखती। और कई बार मूवी देखने में इंटरेस्ट भी होता है तो भी एक प्रेशर होता है माइंड पे कि नहीं आज रील पोस्ट करनी है, तो भी रील देखती हूँ। लेकिन जब वो जो रिस्पॉन्स आता है, कई बार स्ट्रीट फूड वेंडर्स के रेस्टोरेंट से जब सुनने को मिलता है कि आपकी रील की वजह से काफी सेल हुई, काफी अच्छा मिला, और कई बार स्ट्रीट फूड वेंडर्स से हमें ब्लेसिंग मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है वो, इट्स लाइक वो मूवी देखने से ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है, आई गेस।
तो मैम कोई फनी इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगी जो हुआ हो आपके साथ वाइल रिकॉर्डिंग अ ब्लॉग या फिर वाइल अप्रोचिंग अ रेस्टोरेंट या स्ट्रीट वेंडर फॉर शूटिंग परमिशन?
परमिशन तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एक फनी इंसिडेंट है। मैंने कोटा में एक बार ऐसी जाते जाते एक ब्रेकफास्ट प्लेस थी पोहा की, वो शायद मैंने पिन भी कर रखी है, मैंने उन्हें रिकॉर्ड किया था। तो अंकल काफी फनी थे, है ना, तो ही भी लाइक मेरे तो बहुत रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसे वैसे मैंने उनका रिकॉर्ड करके डाल दिया।
हाँ
उनकी रील जब रिकॉर्ड करते टाइम ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब उनकी रील वायरल हुई तो उनके यहाँ पे इतनी भीड़ लग गई थी, इतनी भीड़ लग गई थी, और एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट मी ओनली वहां पे जाके। मतलब मैंने खुद देखा था, मैं वहां साइड में खड़ी थी जाके,
जी
और एक सर आए, पता नहीं एक अंकल थे, सर थे, उन्होंने उनको बोला, पोल वाले अंकल को, इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरी स्टूडेंट है, आई स्वेयर मैं उन अंकल को नहीं जानती थी। मतलब जब आप थोड़े से भी फेमस होते हो तो सबका ही होता है, नहीं नहीं मैं इसको जानता हूँ, ये मेरी दोस्त है, इसने मुझे पढ़ाया। और जो पोहा वाला अंकल था, मैंने बोला हाँ मेरी तो रिश्तेदारी है ये, जिनकी मैंने वीडियो बनाई। और मेरे अंकल जब मैं वीडियो बनाने आई थी, तब अंकल मुझसे कोई मतलब नहीं था, और जैसे ही आप फेमस हुए, और लिटरली मैंने एक चीज और देखी थी, वो मेरी पहली वीडियो थी जो इतनी वायरल हुई थी, एक दो बच्चे थे वो बाइक पे जा रहे थे, तो एक बाइक पे से फटाफट से उतरा और भाग के आया अंकल के पास और उसने बोला देखो 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 अंकल आप कितने फेमस हो रहे हो। तो ना मुझे वो भी देख के बहुत हंसी आई थी और अंकल बोलते हाँ मैं तो ऑलरेडी फेमस था यही आई थी तो मैंने वो सुना, इट वॉज क्वाइट फनी। मतलब ठीक है इट्स ओके, बाकी लोगों को इस चीज की वैल्यू नहीं पता कि क्या क्या नहीं। नो डाउट अंकल के पोहा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट भी सर्व करते हैं, लेकिन उन्हें काफी फायदा हुआ था। बट जैसे कि हमारे पुराने लोग लोग जो होते हैं उनका हमेशा ऐसा होता है कि हाँ ठीक है मैं तो ऑलरेडी जानता हूँ, मैं तो ऑलरेडी फेमस हूँ, वो वाला एक फनी इंसिडेंट था।
सो मैम, आपका फूड ब्लॉगिंग को लेकर फ्यूचर प्लान क्या है?
फूड ब्लॉगिंग को लेकर फ्यूचर प्लान है ऑफ कोर्स, हमेशा ये रहेगा और मतलब आगे जाके भी ये मेरी लाइफ का पार्ट रहेगा क्योंकि आई एम फूडी, तो खाना वाना तो हमेशा रहेगा ही। इट्स जस्ट लाइक फ्यूचर प्लान मेरा हमेशा से ये रहा है, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे आई डू द क्लिनिक और सैटरडे संडे आई गो एंड एक्सप्लोर हिमाचल फूड और उत्तराखंड फूड और एनीवेयर जहाँ भी मुझे मौका मिल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक होता है ना कि आपने 5 दिन अपनी हैप्पी सिटी के साथ में काम कर लिया, फिर
जी
आपको अपना माइंड फ्रेश करने के लिए भी कुछ चाहिए तो निकल जाएंगे फिर एक्सप्लोर पे और फूड ब्लॉगिंग जो होगी वो भी मेंटेन हो जाएगी।
या बिल्कुल मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। तो मैम, फूड ब्लॉगिंग जर्नी ने आपको क्या सबसे बड़ा लेसन दिया?
क्या सबसे बड़ा लेसन दिया? लेसन तो यही है कि लोग, मैं अब जब कोरोना के बाद से लोगों को देख रही हूँ, लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब इन द सेंस कैफेज वगैरह काफी बंद हो रहे हैं कोरोना के बाद से, बहुत
जी
स्ट्रगल है कैफेज और इन सब में। और ऐसा नहीं है, मतलब जब भी मैं फूड ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे काफी इंटरेक्टिव चीजें भी मिलती है, मेरा इंटरेक्शन काफी अच्छा हुआ और काफी अच्छे लोग भी हैं, तो लेसन तो यही है।
तो मैम, आप अपने फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया में इंगेज करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करती हैं, स्पेशली जेंजी के साथ कनेक्ट करने के लिए?
स्ट्रेटेजीज यार, पहले एक्चुअली मैं वॉइस ओवर नहीं करती थी, अब मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है और उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। मतलब आप अपना सिर्फ खाने का मत बताओ कि खाना कैसा है, आप अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करो कि फर्स्ट बाइट जब आपने लिया आपको कैसा फील हुआ, या जब आप उस जगह पे गए तो आपने कैसा फील किया। क्योंकि सिर्फ आप किसी रेस्टोरेंट कैफे या स्ट्रीट फूड वेंडर के पास भी जाते हो तो सिर्फ खाने का नहीं होता, कई बार जगह का भी होता है। आपका जगह जो होती है, लोगों से बात करने का, जो लोग जिस टाइप से आपसे बात करते हैं, वो चीज़ एकदम फूड का टेस्ट भी बदल देती है। इट्स जस्ट लाइक आप किसी स्ट्रीट फूड वेंडर से बात करोगे और आपको बहुत, जब आप उनकी वीडियो बना रहे हो, कोई बुजुर्ग है और वो आपको इतना प्यार से और इतना इज्जत से जब आपको सर्व करते हैं तो वो टेस्ट अगर एवरेज भी हो ना तो वो आपको काफी टेस्टी लगेगा कि वाह ऐसे वाला।
जी मैम,
और जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो उसकी वाइब होती है वो भी काफी मैटर करती है।
तो मैम मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इंस्टेंटली उनके आंसर करने होंगे। आपका
ओके।
फेवरेट फूड रिलेटेड इंस्टाग्राम पेज क्या है?
चाहत आनंद एंड जिंदगी जस्ट,
ओके, बेस्ट मील यू हैव एवर हैड?
यार आई विल से आलू का पराठा, वो भी मम्मी के हाथ का।
वाह मैम, वाह, दैट्स सो लवली। वर्स्ट कमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड ऑन योर रील और वीडियो?
वर्स्ट कमेंट तो यार बहुत सारे होते हैं। हाँ वर्स्ट कमेंट मतलब इट्स लाइक उसमें अब्यूसिव लैंग्वेज भी होती है, लेकिन अगर हम उसे अगर साइड में रखें तो एक किसी ने कमेंट किया था मुझे लास्ट टाइम, कितनी तीखी वॉइस है आपकी, मेरे तो कान में चुभ रही है, दैट वाज द वर्स्ट कमेंट।
ओके, मोस्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन यू हैव एवर ट्राइड?
मोस्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन, ऐसे में ज्यादा वियर फूड ट्राई नहीं करती, पर लास्ट टाइम मैंने एक फ्रेंच टोस्ट ट्राई किया था और उसकी रेसिपी वो बहुत ही गंदा था टेस्ट में, और बस मैंने उसे ऐसे ही बना के विदाउट एनी वॉइस ओवर डाल दिया और वो काफी वायरल भी हुआ था। फिर मैं डर गई कि क्यों वायरल हो रहा है।
तो मैम, अगर आपको कोई एक फास्ट फूड खाना हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ तो वो क्या होगा?
गोलगप्पे
गोलगप्पे। ओके, आई आल्सो लव गोलगप्पे।
हाँ
सो मैम, एट लास्ट आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी उनको जो फूड ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं अपनी?
एडवाइस तो यही है कि स्टार्टिंग के जो 2-4 महीने होते हैं उसमें काफी पेशेंस रखना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप कुछ भी करो, फूड ब्लॉगिंग करो या कुछ और करो, बट फूड ब्लॉगिंग में तो रहना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। और मैं तो ये भी बोलूंगी कि आप तो इतना अनहेल्दी भी मत खाओ, लाइक आपको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। कई बार लोग बहुत बीमार भी पड़ जाते हैं, तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हफ्ते में अपने 1-2 दिन रखो, जब आप बहुत अच्छे से स्टोर करो, बाकी दिन आप हेल्दी डाइट लो, आप कंसिस्टेंट रहो हमेशा, आप डेफिनेटली आगे जाओगे अगर आपने 2-3 महीने कंसिस्टेंसी दिखाई और पेशेंस दिखाया तो।
All right, thank you so much, ma'am, for joining and giving our show time. It was really amazing talking to you.
या थैंक यू सो मच।
Thank you, ma'am. Hello, everyone.